بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو اس لیے میں نے صلوات پہلے پڑھا دی ہے اب آخر میں پڑھیے گا رسول فرماتے ہیں کہ باغ جنت میں چلو پھرو اگر باغ جنت کو دیکھو تو اس میں چلو پھرو اور کھاؤ پیو تو لوگوں نے پوچھا باغ جنت کیا ہیں باغات جنت کیا ہیں رسول نے فرمایا ذکر کی مجلسیں تو کتنے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں ہمیں باغ جنت کے پھلوں سے اور اس کے چشموں سے سیراب کر دیا اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کچھ اہل زمین بیٹھ کر ذکر خدا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ملائکہ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے جو جگہ خالی ہے وہ خالی نہیں ہے بلکہ وہاں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایسی توفیقات دیتا رہے آج جس موضوع پہ ہم زبان کھولنے جا رہے ہیں اس میں زبان بندی ہوا کرتی ہے اور جو اس موضوع پہ بولتا ہے اس کو بے حیا کہا جاتا ہے اور وہ موضوع ہے بے حیائی اور اس کے اسباب لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حق و باطل کے معرکے کی جب بات ہوتی ہے تو باطل کی بھی بات ہوتی ہے یزید جیسوں کی بھی بات ہوتی ہے گناہوں کی بھی بات ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے جب تک آپ گناہ کو بیماری کو برائی کو کوتاہی کو خامی کو یا لغزش کو ڈسکس نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا علاج سدباب یا احتیاطی تدابیر کیسے اختیار کریں گے بے حیائی کے احوال یعنی کن کن صورتوں میں وہ موجود ہے اسباب اس کی وجوہات کیا ہیں اثرات دنیاوی اور اخروی اور اس کے بعد اس کا علاج جو سب سے زیادہ اہم ہے پہلا مرحلہ احوال کے اعتبار سے کہ یہ برائی یعنی بے حیائی کن کن صورتوں میں کس کس طرح موجود ہے غیر اسلامی تہوار یا اسلامی تہوار بھی تہوار کو آڑ بنا کر بے حیائی کو جس طرح پھیلایا جا رہا ہے اور جس طرح اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہے ٹھیک ایک ہفتے بعد ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا اسکرویئرس پر اور محبتوں کے خطوط یا ای میلز اور واٹس اپ کے تبادلے ہوں گے سینٹ ویلنٹائن بیچارے نے شادی کروائی تھی محبتیں نہیں کروائی تھیں جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں ان کی کریکشن کر دیجئے اصولاً تو منائے نا اور جو منا رہے ہیں ان کی کریکشن کر دیجئے سینٹ ویلنٹائن نے شادیاں کروائی تھیں محبتیں نہیں کروائی تھیں ویلنٹائن ہو بسنت ہو ہولی ہو دیوالی ہو ہیلوین ڈے ہو کرسمس ہو نیو ایئر ہو 14 اگست ہو 23 مارچ ہو یا عید بقرعید یا کوئی بھی خوشی کا تہوار اس کو جس طرح ایک سازش کے تحت برائی میں بے حیائی میں تبدیل کیا جا رہا ہے وہ اظہر من الشمس ہے لیکن پھر بھی لوگ انٹرٹینمنٹ کے نام پر اس بے حیائی کو بڑے آرام سے گلے لگا رہے ہیں اگر کوئی تہوار کا دن نہیں بھی آتا تو لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں MUN ایک نئی بدعت جو اسکول کالجوں میں شروع ہوئی ہے ماڈل یونائٹڈ نیشنز کے نام پر مختلف وفود مختلف اسکولوں سے بلائے جاتے ہیں کسی بڑے اسکول میں اور ڈسکشن کے دوران گاہے بگاہے ہائی جیکرز کو معاف کیجئے گا گلوکاروں کو بلایا جاتا ہے لیکن ان کو ہائی جیکرز کہنا چاہیے کیونکہ جہاز اغوا کرنے کے لیے ہائی جیکر گن لے کر آتا ہے اور یہ اکیڈمک تقریبات کو ہائی جیک کرنے کے لیے گلوکار گٹار لے کے آتا ہے تو آج کی محفل گن سے نہیں بلکہ گٹار سے یرغمال بنائی جاتی ہے اور تو اور کراچی کے بہترین انسٹیٹیوٹ IBM میں اگر کسی چیف گیسٹ کو بلایا گیا تو وہ ایک ماڈل گرل ایک فاحشہ ایک توائف اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسکارف پہنی ہوئی لڑکیوں نے اس فاحشہ اور اس ماڈل گرل کے ساتھ سیلفی لینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا تو ہمارے یہاں مفکرین، دانشور، شاعر، ادیب، سائنسدان مر چکے ہیں کہ جو ہمیں چیف گیسٹ کے لیے ایک فاحشہ عورت کو بلانا پڑا. اصول دین تو پڑھے ہوں گے آپ نے، آج ہم آپ کو میڈیا کے اصول دین بتاتے ہیں. بلکہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو بھی عمل ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، وہ ون آف دا فائیو ہوتا ہے: واجب، مکروہ، حرام، مباح، مستحب. فلمیں ہمارے یہاں حرام ہیں، ڈرامے مکروہ ہیں. میوٹ کر کے یا فاسٹ فارورڈ کر کے یا چینل بگاہے بگاہے چینج کر کے آپ دیکھتے رہتے ہیں، پورا ڈرامہ دیکھ لیا تو اس میں فلم کا گناہ شامل ہو جائے گا. اشتہارات مباح ہیں، دیکھیں دیکھیں، نہ دیکھیں نہ دیکھیں. ٹاک شوز مستحب ہیں، دماغ کھلتا ہے اور بعض اوقات اس کی سرجری بھی ہوتی ہے اور برین واش بھی ہوتا ہے. نیوز واجب ہے، ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن یہ تمام چیزیں آپ کو حرام کی طرف کیسے لے کے جا رہی ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے نام پر سب کچھ بکتا ہے، جیسے مذاق کے نام پر سب کچھ بک دیا جاتا ہے. تو یہ انٹرٹینمنٹ ہے جو انسان کو اب ایسی راہ پہ لگانے جا رہی ہے کہ جس میں انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کفر کی حالت میں کرے گا. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. فلمیں، ایک زمانے میں فلمیں ہوتی تھیں، رومانٹک فلمیں ہوتی تھیں، سیاسی فلمیں ہوتی تھیں، جنگی فلمیں ہوا کرتی تھیں اور گھریلو فلمیں ہوا کرتی تھیں، اور لوگ اس حساب سے اپنی اپنی چوائس کی فلمیں دیکھا کرتے تھے. لیکن آج کل فلموں کے لیے ایک ٹرمینالوجی ایجاد ہوئی ہے، روم کام، دیٹ از رومانس اینڈ ڈانس اور کامیڈی. اس کے علاوہ فلموں کا کوئی موضوع ہی نہیں ہے. باقاعدہ ملک دشمن عناصر کو استعمال کر کے ملکوں کے خلاف سیاسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں. امریکہ نے رشیا کو افغانستان میں بعد میں شکست دی، لیکن موویز بنا کے، مثلا جیمز بانڈ اور ریمبو ٹائپ کی موویز بنا کے یورپ میں اور امریکہ کے عوام میں اپنی آئیڈیالوجی کو پہلے ہموار کیا، اور جب اس کو شکست دینے کی باری آئی تو لوگ بخوشی تیار ہو گئے. اسی طرح اسلام کو ایکسٹریمزم اور ٹیرورزم کا لیبل لگانے کے لیے پہلے موویز بنائی گئی، میڈیا میں اس کا پرچار کیا گیا. اب لوگ وہاں پہ تیار ہیں اسلام کو ایکسٹریمسٹ، اسلام پسندوں کو ایکسٹریمسٹ یا ٹیرورسٹ کہنے کے لیے اب وہاں کام کرنا آسان ہو گیا ہے. ڈرامے فلموں کی تقلید میں جو صحیح کسر تھی وہ ترکی ڈراموں نے پوری کر دی. ترکی ویسے بھی آدھا ایشیا میں ہے، آدھا یورپ میں ہے، اور کئی دہائیوں سے کشکول میں بھیک مانگ رہا یورپی یونین کی ممبرشپ کی، اور آج تک بیچارے کو یورپی یونین کی ممبرشپ نہیں ملی. اور اگر کچھ کہا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ڈرامہ نہیں، یا مسلمان اسلامی ملک کا ڈرامہ نہیں، یہ ترکی کا ڈرامہ ہے، جس کا کچھ نہیں پتا، جس کا صدر خود آئیسس کے ساتھ اور داعش کے ساتھ خفیہ سرگرمیوں میں ملوث ہے. اس کے بیٹے اور داماد کی جو ڈیلنگز ہیں آئل سے متعلق، وہ اب تشت ازبام ہو چکی ہے. اشتہارات، آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک منٹ، آدھے منٹ کا اشتہار ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ اگر وہ اشتہار تین گھنٹے میں 45 منٹ چلے گا تو بھئی اس نے ایک گھنٹے کے ڈرامے کے برابر جو ہے وہ جگہ لے لی. مسلسل میوزک، مسلسل بے حیائی، مادیت پرستی، اور پیغامات اتنے الٹے سیدھے اور اتنے مسلسل تسلسل کے ساتھ کہ بچے کیا بڑوں کی زبان پر بھی ہیں. داغ تو اچھے ہوتے ہیں، اچھا ہم نے تو سنا تھا صفائی نصف ایمان ہے، کھا لے پی لے جی لے. ارے ہم نے تو سنا تھا جو زیادہ کھاتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. یہ سلوگنز لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. پھر لوگوں نے ٹاک شوز دیکھنے شروع کیے اور لوگ ان کو رہبر اور رہنما اور پتہ نہیں کیا کیا خطاب دینے لگے. پتہ چلا کہ یہ ٹاک شوز نہیں، تاک شوز ہیں، یعنی تاکا جھاکی. ایک لیڈر کو بلایا، پھر دوسرے لیڈر کو، پھر تیسرے لیڈر کو، اور پھر بلیک میلنگ کے لیے چوتھے پانچویں کو. بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ اینکر پرسن تو خود برائے فروخت ہیں. اور جس طرح برین واش کیا گیا نوجوانوں کا، جب کیپٹل پنشمنٹ پاکستان میں ختم کی گئی تو 6 مہینے تک کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ٹاک شوز کیے گئے. زنا بر رضا کو جب ختم کرنے کی بات آئی تو باقاعدہ ٹاک شوز کیے گئے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ پریزیڈنٹ صاحب یہاں سے چلے گئے. تو باقاعدہ ایک مضموم سازش کے تحت، ٹاک شوز کے تحت، 6 مہینے، سال بھر یا 3 مہینے کا جو ہے پیریڈ ہوتا ہے، और वो थियोलॉजी आइडियोलॉजी फैलाई जाती है और उसके बाद वो बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है और इसकी बहुत बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं। और आपको मालूम है पाकिस्तान में पैसा बोलता है और कभी बोलने पे या बोल पे पाबंदी भी लग जाती है। न्यूज़ तरजीहात पे डिपेंड करती है, जो असल खबर है वो गायब हो जाएगी। अदाकारों की बरसी, फला अदाकार को हमसे बिछड़े हुए 5 साल हो गए, फला अदाकार को 10 साल हो गए। अरे आपके साइंसदान मर गए, आपके मुफक्किरीन मर गए, आपके जो बड़े बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं या बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं तहरीक पास पाकिस्तान की, क्या उनकी वफात नहीं हुई? क्या सब अभी तक जिंदा हैं क्या? तो तरजीहात जो खबरें देने की हैं वो कभी नहीं दी जाएंगी। अभी शायद 10 दिन भी नहीं गुजरे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कि रोजे पे बमबारी की गई। ठीक है, अगर आपको कोई एनाद है तो बीबी से है, कम अज कम जो 50 अफराद शहीद हुए हैं उसके साथ मुल्हिक बिल्डिंग में, कम अज कम उनको जहन में रखते हुए खबर दे देते दे आप। बहरहाल सिनेरियो तो बहुत इससे ज्यादा गहरा और वसी है, इतना काफी है। असबाब की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि ये बेहयाई के पीछे कौन सी साजिश कार फरमा है। इसके लिए माजी के झरोखों में झांकना पड़ेगा, मुस्तकबिल के अंदेशों को देखना पड़ेगा और फिर हाल की तबाहकारियों को। माजी के झरोखों में बलाम बाउर का तरीक़ाकार जो आजकल इस्तेमार की स्ट्रेटजी बन चुका है, कौन? बलाम बाउर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शागिर्द, ज़हीन शागिर्द, जिसने कहा कि मैंने बहुत इल्म हासिल कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये इल्म फैलाऊँ। फ़लस्तीन की तरफ रुख किया, वहाँ का जो बादशाह था, वहाँ के जो गुजरा थे, उमरा थे, एलिट क्लास इशराफ तबका, उसकी गर्दी जमा हो गया और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बिक गया। अपने ईमान को और अपने इल्म को महंगे दामों उसने फरोख्त कर दिया। इतने महंगे दामों को जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की कि जाओ फ़लस्तीन के बादशाह के खिलाफ जिहाद करो, तो लोग इसके पास आए और कहने लगे कि बलम बाउर तू तो मुस्तजाबुद दावा दे, तू हमारे लिए दुआ कर। जब उसने ये देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम और उसके हवारी, तो उसने मना कर दिया, भाई ये तो पैगंबर हैं, अल्लाह इनके साथ है, मैं नहीं कर सकता इनके खिलाफ दुआ। दूसरे दिन आए, उसने यही जवाब दिया। तीसरे दिन लोग उसकी बीवी के पास पहुंच गए, उसकी बीवी ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि वो जो है तैयार हो गया। हो सकता है कोई बहुत बड़ी लालच दी गई हो। अपने गधे पे सवार पहाड़ी की तरफ रवा दमा, जहाँ पे मूसा की कौम मौजूद थी, गधे ने पहाड़ पे चढ़ने से इनकार कर दिया और फिर अल्लाह ताला ने उस गधे को कुव्वत गोयाई दी और ये कहा कि तू किसके खिलाफ दुआ करने जा रहा है? पैगंबर के खिलाफ? तो खुद नीस्त नाबूद हो जाएगा। उसने अपने गधे को लात मारी, गोया खुद गधा बन गया और गधा इंसान पहाड़ पे खुद से चढ़ा और इसमें आजम जो उसको याद था उसको लेकर दुआ करने लगा। पता चला कि इसमें आजम उसके जहन से महव हो गया। लोगों ने दुआ करवाई कि देखो दुआ करना, मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर शिकस्त खाए और बादशाह को फतह हो। उसने जब हाथ उठा के दुआ शुरू की तो इसमें आजम उसके जहन से महव हो गया और वो दुआ करने लगा, ए अल्लाह मूसा के लश्कर को फतह दे और बादशाह के लश्कर को शिकस्त। जब वो नीचे उतरा तो लोगों ने कहा बलम बाउर तूने ये क्या किया? उसने कहा वही तो किया जो तुम कह रहे थे, कहला तूने तो मूसा के लिए फतह की दुआ कर दी, बादशाह के लिए शिकस्त की दुआ कर दी। अब उसको यकीन हो गया कि अब उसकी दीन और दुनिया दोनों हाथ से गए और अल्लाह ताला का मुकम्मल तौर पे उस पर कब्जा। उसने कहा मेरी दुनिया और आखिरत दोनों ही तबाह हो गए, चुनाचा आखिरी हर वास्ता इस्तेमाल कर लूँ। जिस तरह शैतान अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हुआ, गुनाह कबीरा किया और आज तक रानदा दरगाह मलून ठहरा, बलाम बाउर ने भी यही किया। और आखिरी हरबा क्या था? उसने कहा यहूदियों अपनी औरतों को बना संवार कर मूसा के लश्कर में भेज दो और जो वो चाहें करने दो, मना नहीं करना, इन खवातीन को कह दो। खवातीन बन सच के आरास्ता और पैरास्ता हो के मूसा के लश्कर में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की लेकिन बाल आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ज़मरी बिन शलूम बहुत बड़ा कमांडर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का पहुंच गया, वो एक औरत का हाथ पकड़ के मूसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर आया कि अगर तुमने कहा कि ये हराम है तो भी मैं ये फेल अंजाम दूंगा। और फिर पूरी फौज में जिनाकारी की जो है वो वबा फैल गई। उस वबा के साथ ताउन की वबा भी फैली। हमारी यहाँ हदीस है, जिस कौम में जिनाकारी फैल जाए मर्गे मफाजात और बीमारियां और मौतें आम हो जाती हैं। 20,000 लोग मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर के हलाक हो गए। फिर उसके बाद फक्कास बिन अईज जो मूसा अलैहिस्सलाम का पोता था, वो जब आया तो उसने जो है देखा कि ये क्या है, तो लोगों ने सारी सूरत हाल बताई। चुनाच वो जो है जमरी बिन शलूम के पास गया और उसको कत्ल किया। उसके बाद ये ताउन की वबा खत्म हुई, खिस्सा खत्म हो गया, मूसा की कौम को फतह हासिल हुई। लेकिन यहूदियों ने ये नुक्ता पकड़ लिया कि अगर कभी हक को, कभी इस्लाम को शिकस्त देनी हो तो इस कौम में बेहयाई फैलाओ, और ये बेहतरीन तरीका है। अच्छा, अगर ये इतनी बात होती तो हम भूल जाते, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि ये माजी की बात नहीं है, मुस्तकबिल की बात भी यही है। जब दज्जाल का लश्कर आएगा इमाम से लड़ने के लिए, तो उसके एक हाथ में मौसीकी के आलात और दूसरे हाथ में फाहिशा औरतें होंगी। और यही दो चीजें आप देख लें आज भी मगरिब इस्तेमाल कर रहा है, मौसीकी और फहाशी। आप मीडिया को ले लें, आप महफिल को ले लें। ये बात मैं आपको बतला दूं कि हमारा इंशाअल्लाह कोई इम्कान नहीं कि हम में से कोई सुफियानी के लश्कर को ज्वाइन करे। इमाम के लश्कर के मुकाबले में दो लश्कर आएंगे, एक तो सुफियानी का लश्कर, दज्जाल का लश्कर। सुफियानी का लश्कर दाइश की सूरत में, आईएसआईएस की सूरत में, तालिबान की सूरत में, कायदा की सूरत में, दहशतगर्द तंजीमों की सूरत में वजूद में आ चुका है, लेबल लग चुका है, लोग ज्वाइन कर चुके हैं और हम उनसे नफरत तबर्रा का इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन दज्जाली लश्कर मादियत परस्ती का ढोल लेके पूरी दुनिया में उस ढोल को बजा रहा है, और मुसलमान क्या, गैर मुस्लिम क्या, तमाम लोग उसकी दावत पे लब्बैक कर रहे हैं। ये ऐन मुमकिन है कि हम दज्जाल के लश्कर के साथ खड़े हों और इमाम के मुकाबिल खड़े हों, क्योंकि हम अभी से मादियत परस्ती की बीमारी में मुब्तला है। बहरहाल इस सूरत हाल के असरात क्या हो सकते हैं इसको देखते हैं, शायद इन असरात को देखकर हम जो है इस मादियत परस्ती या बेहयाई से अपना मुंह मोड़ लें। दुनियावी नुकसान क्या है, इनफरादी नुकसान। हदीस रसूल है कि जिना के तीन दुनियावी नुकसान हैं, आबरू में कमी, रिज्क में कमी और उम्र में कमी। आबरू में कमी, चाहे कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी, अदाकार, सदाकार, गुलकार क्यों ना हो, अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में बेइज्जत होता है। ठीक है, नौजवान बहुत पसंद करते हैं अदाकाराओं को, अगर कहा जाए इससे शादी करोगे फौरन इनकार कर देंगे। लड़कियां हो सकता है किसी अदाकार का नाम ले लें, लेकिन अगर कहा जाए इससे शादी करोगे वो फौरन इनकार कर देती, क्योंकि इंसान का जमीर गवारा नहीं करता। नफ्स के हाथों मजबूर तो हो जाए देखने के लिए उनकी फिल्में और उनके बारे में बातें करने के लिए, लेकिन शरीक हयात के तौर पर कोई शख्स भी नहीं कहेगा कि मैं एक फाहिशा औरत या एक फासिक व फौजर औरत को, मर्द को अपना शरीक कार या शरीक हयात बनाऊं। रिस्क में तंगी, बेरोजगार लोग सिर्फ आपको तरक्की पजीर मुल्कों में नहीं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में मिलेंगी। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डॉक्टर है मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ है, इंजीनियर है हाथ में पाना लिया हुआ है, अकाउंटेंट है और गैस स्टेशन पे गैस फिल कर रहा है। तो मगरिब के लोग उधार पे जी रहे, मगरिब के लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट पे जी रहे, और मशरिक के लोगों के पास खाने को कुछ नहीं। उम्र में कमी, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में फकत 6 बीमारियां पहले शामिल होती थी, अब लातादाद बीमारियां शामिल हैं। एड्स का वायरस इसी जिनसी बेराहरवी की वजह से फैला। जीका वायरस अभी हालिया अमेरिका और 23 ममालिक में फैलने वाला वायरस है जिसने 40,00,000 लोगों को मुतासर किया है। औरतों को हो जाए तो बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, माइक्रोसेफेली, छोटे दिमाग, छोटी खोपड़ी के साथ पैदा होते हैं। इस जीका वायरस के बारे में कहा जाता है, अभी इस हफ्ते की खबर है कि यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसकी वैक्सीन शायद 10 साल तक दरियाफ्त ना हो सके। इज्तिमाई नुकसान, हदीस में है कि जब मेरे पास जिना कसरत से होने लगेगा तो मर्गे मफाजात भी कसरत से होने लगेगी। मर्गे मफाजात यानी अचानक मौत का होना। जब जिना ऐलानिया तौर पर होने लगेगा तो जलजले आने लगेंगे, और यह हकीकत है। जलजले से जिस तरह लोग भागकर घरों और दफ्तरों से निकलते हैं, अगर आजान की आवाज सुनकर निकले तो शायद जलजले कभी ना आए। अमरीका में इस वक्त कैलिफोर्निया में बारिश हो रही है, इस वक्त सर्दी के मौसम में कैलिफोर्निया में कभी बारिश नहीं हुई, अनएक्सपेक्टेड वेदर। कनाडा में सर्दी नहीं पड़ी, अनएक्सपेक्टेड वेदर। तो अनएक्सपेक्टेड वेदर खुद कई अमवात को जन्म लेता है, और अगर कोई एक्सपेक्टेड तबाहकारी है तो इतनी शिद्दत के स्केल पर है कि तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद इंसान जो है उसको टैकल करने से कासिर है। जून जुलाई में बाकायदा शिद्दत के साथ पाबंदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में बारिश होती है। तो ये क्या सब कुछ मुसलमान मुल्कों में नहीं हो रहा? एक ज़माने में फ़लस्तीन और इसराइल में जब जंग छिड़ी हुई थी, उस ज़माने की स्टैटिस्टिक्स है कि सऊदीया में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से इतनी अमवात हुआ करती थी जितनी फ़लस्तीन में शहादतों से नहीं हुआ करती थी। ये क्या है? मर्गे मफाजात है, अचानक अमवात है। वजह जिनाकारी, बेहयाई। अगर लोग जी रहे तो किस तरह जी रहे? शादियों में ताखिर बहुत आम सी बात हो गई है। लड़के तो छोड़, अब लड़कियां भी जो है वो कैरियर प्लानिंग की दौड़ में शामिल हो गई लड़कियां भी। और शादियों का ताखिर से होना जो है लोगों को कोई बुरा भी नहीं लगता, बल्कि कहा जाता है बच्चियों को पढ़ाते हुए, बेटा तुम कुछ बन जाओ, अगर खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त पड़ा तुम्हारे पास डिग्री तो होगी, जॉब तो कर सकती हो, किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं होगी। लतीफे बनाए जा रहे हैं और बेहस हो गए, हम लतीफों पे हंस भी देते हैं, क्या करें, मजबूरी है गम भुलाने के लिए। एक लतीफा आप भी सुन लीजिए। एक 20 साल की लड़की का रिश्ता आया, लड़की ने पूछा लड़का कैसा है। वही लड़की जब 25 साल पे पहुंची, उसके कहा गया कि तुम्हारा रिश्ता आया, तो लड़की ने कहा लड़का कितना कमाता है। और जब उसी लड़की से 30 साल में कहा गया तुम्हारा रिश्ता आया है, तो लड़की पूछती है कहाँ है। तो ये हालात हो गए और लोग हंसते हैं। बहरहाल स्कोर बराबर करने के लिए मर्दों का भी एक लतीफा सुन लीजिए। अब मर्द ये समझते हैं भाई लड़कियों की तो शादी नहीं हो सकती, अबव 30 अबव 35 या जैसे, लेकिन लड़कों की हो जाती है, वो अपने आप को लड़का कहने पे मुसर हैं, 40 साल 45 साल 50 साल के हो जाते हैं, कहते नहीं नहीं हम लड़के ही हैं, पैसों के बलबूते पे छोटी सी उम्र की खूबसूरत सी लड़की से शादी कर लेते हैं। एक साहब ने ऐसे ही किया, बुढ़े कुसट और लड़की माशाल्लाह उनके पास ऐसी कि उनकी बेटी लगे। जा रहे थे किसी बाजार में तो एक शख्स ने कहा जाख की चोच में अंगूर खुदा की कुदरत, पहलवे हूर में लंगूर खुदा की कुदरत। और वो साहब उनको जो है वो मारने को दौड़े, खूब पिटाई की, लोगों ने बहुत बच बचाव कराया और उन साहब से पूछा भाई आप क्यों मार रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा इसने मेरी बेगम को लंगूर कहा है। तो अच्छा, जिनकी शादियां हो गई हैं वो तलाकों का सोच रहे हैं। पहले शादी के लिए इस्तखारा होता था, अब तलाक के लिए इस्तखारा हो रहा है। अब तो यह है कि मौलाना साहब खुतबा निकाह का खुतबा पढ़ाने के बाद कहते हैं अब तलाक के लिए कब आऊं। रसूलुल्लाह की हदीस है कि मुझे अपनी कौम में खुफिया मुआशिकों का बड़ा अंदेशा है, बड़ा डर है। ये खुफिया मुआशिके इंटरनेट पे, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, अब गली कूचों में नहीं होते, अब तो बेडरूम में आप यहां बैठे हैं और दूसरी शख्सियत कनाडा में, अमेरिका में या कराची के किसी कोने में। तलाकों की कसरत, जो तलाक मतलब जो शादी कर चुके हैं वो रिवर्स गियर लगाने की सोच रहे हैं, तलाक का सोच रहे हैं। लावारिस बच्चे अमेरिका में इतने ज्यादा हो गए हैं कि उन्होंने वल्दियत का खाना ही फॉर्म से निकाल दिया। बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो या आपका आइडेंटिटी कार्ड बनना हो, वल्दियत के बारे में पूछते नहीं है कि आदमी शर्माते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ, लड़के से पूछा बेटा आपका, आपके वालिद साहब का नजर नहीं आ रहे। लड़के ने एक आह भरी, खलाओं में घूरा और कहा डिफिकल्ट क्वेश्चन, हम समझ गए पसंद की शादी है, बाप ने आने से इनकार कर दिया। एक साहब ने कहा देखा आप बहुत बुरा कहते हैं बाहर के लोगों को, बाहर के लोगों के बच्चे भी उनकी शादियों में शिरकत करते हैं। अभी एक फिल्मी जोड़े ने शादी की अमेरिका में, तो 4 बच्चे उनके शरीक हुए उनकी शादी में। अब इसको अगर आप नेकी कहेंगे तो गुनाह कैसे कहेंगे? गैर फितरी गुनाह, गैर फितरी असरात ऐसे हैं कि जिनको बयान करने से जबान कासिर है। लेकिन याद रखिए हदीस रसूल है कि तुम लोग यहूद नसारा की तरह हो जाओगे, जैसे एक पांव का जूता दूसरे पांव के जूते की तरह, अगर कोई उनमें से अपनी मां के साथ जिना करेगा तो तुम में से भी कोई अपनी मां के साथ जिना करेगा। लवातत के बारे में खलीफा दोयम के दौर में एक शख्स, एक गुलाम लाया गया कि उसने अपने आका को कत्ल किया था और कहा गया कि उसको भी कतल करना चाहिए। मौला अली को बुलाया गया तो उसने कहा कि मैंने अपने आका, मेरे आका ने मेरे साथ कौम लूत का फेर अंजाम दिया था, इसलिए मैंने उसको कतल कर दिया। मौला अली से पूछा गया आप क्या कहते? मौला अली ने कहा 3 दिन ठहर जाओ। 3 दिन ठहरे, फिर सब लोगों को उस गुलाम की आका की खबर के पास ले गए और कहा खबर खोदो। लोग घबराने लगे, उन्होंने कहा नहीं खबर खोदो। खबर खोदी गई तो आका की लाश उस खबर में से गायब थी। मौला से पूछा यह लाश कहां गई? तो मौलाना ने जवाब दिया जो कौम लूत का अमल अंजाम देता है 3 दिन के बाद उसकी लाश अल्लाह ताला कौम लूत के कब्रिस्तान में पहुंचा देता है। آخروی نقصان اس بے حیائی کا. خواتین غور سے سن لیں جو یہاں اس مجمع میں بیٹھی ہیں اور جو دوسری جگہ پہ ہیں, ان تک یہ پیغام پہنچا دیں. رسول اللہ نے معراج میں خواتین کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون عورتیں, لیکن یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنتے ہوئے برہنہ دی, دوسروں کی طرف مائل ہوتی اور اپنے آپ کو مائل کر دی, ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی کوہانوں کے مانند ہوتے. اس قسم کی عورتیں نہ تو بہشت میں جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگھیں گی جس کی خوشبو بہت فاصلے سے محسوس ہوتی ہے. کپڑے پہنتے ہوئے برہنہ, بہت سمپل سی مثال ہے, ٹائٹس. حدیث میں لفظ شلوار استعمال ہوا ہے, میزان الحکمت کی حدیث ہے, جا کے پڑھ لیجئے, کہ برکت ہو ان عورتوں پہ جو شلوار پہنتی ہیں. حیران دے ہم کچھ عرصے پہلے کہ یہ لفظ شلوار کا تذکرہ, یعنی ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کی حوصلہ افزائی. خصوصی طور پہ شرم آتی ہے ماؤں کو دیکھ کر کہ مائیں اپنے بیٹیوں کے ساتھ ٹائٹس پہن کر اسکول جا رہی ہیں, آفیسز جا رہی ہیں, بازاروں میں گھوم رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ اسی حدیث کے مصداق بننا چاہ رہی ہیں. اور وہ عورتیں جو جوڑا بناتی ہیں اور اس طرح نمایاں جوڑا بناتی ہیں بالوں کا کہ جو لگے کہ آپ نے کچھ پیچھے کچھ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسے بال رکھیں گی جیسے اونٹ کا جھکا ہوا کوہان, ٹرینگولر شیپ ہوتا ہے نا اونٹ, کونیکل شیپ, اس کو جھکا دیں آپ تو وہ ہوریزونٹل ہو جائے گا. اس کے علاوہ معذرت کے ساتھ, خواتین کا مجموعہ اگر برا لگے تو کوئی بات نہیں, آج موضوع یہی ہے, یہ جو آپ رنگین نیلے پیلے پنک اسکارف پہنتی ہیں, شہلا پہنتی ہیں, خدا را یہ آپ کے حجاب کی توہین ہے. حجاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو چھپائیں کہ لوگ آپ کو دیکھنے سے پہلے اپنی نظریں جھکا لیں. اگر آپ نے حجاب ہی ایسا پہنا ہوا ہے زینت اور آراستہ و پیراستہ ہو کے کہ لوگ آپ کو نظر اٹھا کے دیکھیں کہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, کس کلر کا جو اسکارف یا شہلا یا چادر پہنی ہوئی ہے, یا چادر پہنی ہوئی تو سپر مین کی طرح کہ بس وہ پیچھے لہرا رہی ہے, تو خدا را ایسے حجاب سے باز آئیے اور وہ حجاب اختیار کیجئے جو شرعی ہے. کم از کم شرائط تو پوری کریں, سی تھرو نہ ہو, شفاف نہ ہو, ٹائٹ نہ ہو, بہت تنگ نہ ہو, خوشنما زینت والا نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں. تو رسول کی اس حدیث کو یاد رکھیے اگر آپ اس طرح کا حجاب کر رہے ہیں. بد نظری کی سزا, مطلب جو خواتین یہ کر رہی ہیں وہ تو ہیں عذاب کی مستحق, جو مرد ان کو دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت میں ان کی آنکھوں میں گرم گرم دہکتی ہوئی آگ کی سلگتی ہوئی سلاخیں ڈالی جائیں گی جب تک ان کو جہنم میں نہیں ڈال دیا جاتا. یعنی جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کی آنکھوں میں سلگتی ہوئی سلاخیں, آگ کی سلاخیں. اور یاد رکھ لیجئے قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس سے بھی بڑی بات, کہتے ہیں کہ جو شخص کسی نامحرم کو لذت بری نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے مولا علی کو 60 مرتبہ قتل کیا ہو. رسول فرماتے ہیں کہ پہلے کے زمانے کا شقی ترین الفاظ قدار بن سلف, جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹی تھی, اور میرے زمانے کا یعنی میرے بعد جو شقی ترین لفظ شخص آئے گا وہ ہوگا جو تیرے داڑھی کو تیرے سر کے خون سے خضاب دے گا. عبد الرحمان ابن ملجم تو ایک مرتبہ کے فعل سے ملعون ٹھہرا, مولا علی کے ماننے والے اس فعل کو کرنے سے 60 مرتبہ مولا کے قاتل بن جاتے ہیں, اور دن میں کئی مرتبہ اگر یہ فعل کریں تو کتنی مرتبہ مولا کو قتل کریں گے. زنا کے 3 آخروی نقصان, خدا کی ناراضگی, حساب میں سختی اور جہنم. اور اس کے بعد سب سے اہم چیز جو یہاں بتلانی ضروری ہے وہ ہے علاج. اس بے حیائی کے علاج سے کیسے بچے؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. تریاق بھی ہے, ویکسین بھی ہے, وہ ہے حیا. اسے بچوں کو ہم ویکسین لگاتے ہیں کہ آئندہ آنے والی بیماری سے بچ جائے, اپنے اندر حیا پیدا کریں. الحمدللہ حدیث کے مطابق حیا کے 10 اجزاء میں سے 9 عورتوں میں ہیں اور 1 مردوں میں. لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد جو ہے مادر پدر آزاد پھرے. مروت یا جوان مردی کا کمال یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے بھی حیا کرو, یعنی اکیلے میں, یعنی تنہائی میں, یعنی ایسی جگہ جہاں پہ اجنبی لوگ ہوں, دیکھنے والے نہ ہوں, ان سے بھی جو ہے حیا, ان سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے حیا کرنے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جب تمہیں حیا نہیں تو جو چاہو کرو, چاہے چھوٹا چاہے بڑا گناہ. جس کے پاس حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں, مسلمان ہو کہ کرسچن ہو چاہے ایتھیسٹ ہو, سب اگر بے شرم ہو جائیں तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इस हया को पैदा करने के लिए, बेहयाई से बचने के लिए अपने अंदर जहालत पैदा कीजिए, अपने अंदर इल्म पैदा कीजिए, अपने अंदर भूख पैदा कीजिए। रसूल की एक हदीस में तीनों चीज़ें मौजूद, और बड़ी अच्छी टिप है आजकल के लोगों के लिए जो कहते हैं जहालत से कैसे बचे, ये बेहयाई से कैसे बचे, जहालत पैदा करें। जहालत क्या है? जहालत यह है कि आदमी शर के कामों से बेखबर रहे, यानी जो गुनाह के काम हैं उनसे बेखबर रहे। रसूल फरमाते हैं मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो साकिनी ने जन्नत में अक्सर लोगों को देखा कि वो भोले भाले लोग थे। पूछा गया वो भोले भाले लोग कौन थे? कहा बुराई से गाफिल थे लेकिन खैर के मामले में अकलमंद थे, और हर महीने 3 रोज़े रखा करते थे। हमें पूरे मोहल्ले की सीक्रेट, पूरे ख़ानदान की पोलें, और हर किसी के राज मालूम होते। फलां का चक्कर फलां से चल रहा है, फलां जो है फलां जगह ये काम करता हुआ देखा गया, फलां जो है ये काम कर चुका है और मौका आने पर मैं उसके राज अफशा कर दूंगा। ये सब क्या है? बुराइयों की खबरें रखना। फिल्में नहीं देख रहे लेकिन फिल्म की पूरी स्टोरी मालूम है आपको, गाने नहीं सुने उसकी धुन आपको मालूम है। ये सब क्या है कि हराम काम ना करने के बावजूद हराम काम का तजस्सुस। चलो देखते देख ही लें आजकल क्या मसला है। इस फिल्म की बड़ी तारीफ कर रहे हैं लोग, चलो थोड़ा सा देख ही लें, उसका ट्रेलर ही कम से कम देख लें। ये ड्रामा लोग बड़े शौक ज़ोर व शौक से देखते हैं, मगरिब से पहले आता है, लोग कहते हैं मगरिब की नमाज जो है हमारी ताखिर से होती है। चलो बड़ा पसंदीदा, बड़ा तफरीही और हंसी मजाक में मबनी है, चलो देख ही लें। तो ये जो तजस्सुस है गुनाहों से मुतालिक और चखना है गुनाहों को या उसकी खबर रखना है, इससे बेहतर ये है कि नेकियों की खबर रखी जाए। लोग कहते हैं मैं बुद्धू बने बने रहते हैं, रोज़ाना स्कूल में लड़के लड़कियां जो हैं वो फिल्मों की बातें कर रहे हैं, एल्बम्स की बात कर रहे हैं, सिंगर्स की बातें कर रहे हैं, हम खामोश बैठे रहते हैं, तो बेचारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातों में शरीक होता रहता है और खुद भी उन कामों को शुरू कर देता है। तो गुनाहों की नहीं, नेकियों की मालूमात रखें, और गुनाहों के मामले में ऐसे बन जाएं जैसे कबूतर। रसूल फरमाते हैं मेरा भाई, मेरे भाई हजरत ईसा ने अपने हवारियों से फरमाया ए मेरे हवारियों, शर के मामले में भोले बने रहो ऐसे जैसे कबूतर होता है। कव्वे की तरह नहीं जो जहां दाना पानी देखता है फौरन गिर पड़ता है, कबूतर की तरह जो कि मौला अली का पसंदीदा परिंदा था। मिक्स गैदरिंग, ऐसी जगहों पर जाने से परहेज करें जहां मिक्स गैदरिंग है, और मिक्स गैदरिंग का मतलब फकत शादी ब्याह की तकरीबात नहीं, स्कूलों में मिक्स गैदरिंग होती थी, हो सकती है, और स्कूलों ही क्या हज उमरा ज्यारत में भी मिक्स गैदरिंग हो सकती है। आजकल वो तकद्दस जो पहले हुआ करता था वो खत्म होता चला जा रहा है। एक मौलाना साहब ने हमको बताया कि ज्यारत के दौरान कि आजकल बड़े हालात ख़राब हैं, पिछली मरतबा हम ज्यारत में काफिला लेकर आए थे, एक खातून और एक मर्द का जो है वो चक्कर चल गया और फिर जो है उनका निकाह पढ़ाना पड़ा हमको। तो हमने कहा चले मौलाना साहब कम अज़ कम शादी तो हो गई उनकी। कहने कैसी बात कर रहे हैं, हम दोनों पहले से शादीशुदा थे, यानी दोनों ने तलाक़ें ली अपने अपने रिस्पेक्टिव शरीक हयात से और शादी की। अब उन दोनों का क्या हुआ होगा, लोग कहते हैं कि अब उन दोनों को चाहिए वो भी ज़ियारत पे जाएं। और बहरहाल तो ये हालात हो गए हैं कि हर चीज़ का तकद्दस जो है वो ख़त्म होकर रह गया है। इसका तरीका ये है कि अगर आपको मिक्स गैदरिंग का सामना हो भी पड़ जाए, मसलन आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो जहाँ पर जाना भी ज़रूरी है और हराम भी है, तो इस तरह रहें कि लोग समझ जाएँ कि आपको ये तकरीब पसंद नहीं, कोने में बैठे हैं, अलग थलग बैठे हैं, देर से जाएं और जल्दी आ जाएं। बिल्कुल मिसाल ऐसी है कि आप कहें कि भाई भूख की हालत, भूख नहीं मरने की हालत में हम सुअर का गोश्त खा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन उसका बारबेक्यू बना के ना खाएं, उसके जो है वो फ्राइड आइटम्स ना तलें, उसके शेक हैंड बहुत आम होता जा रहा है, मतलब फिजिकल टच या शेक हैंड कजिन्स में बहन भाई कहकर एक दूसरे से हाथ मिलाया जा रहा है। रसूल कहते हैं मैं किसी औरत को हाथ नहीं लगाता। देखिए हमारा ये प्रेसिडेंट है कितनी आराम से सुकून से उसने बतला दिया कि हमारी सकाफत क्या है। बैत का तरीका क्या होता था रसूल अल्लाह का, अपना हाथ पानी के बर्तन में डालकर बाहर निकाल लेते, फिर औरतें उसमें अपना हाथ डालती और निकाल लेती। आपका लिबास खसूसी तौर पर खवातीन के हवाले से ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव ना हो। हदीस रसूल है, कुरान की आयत है सूरह आराफ आयत नंबर 26 में, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासु तक्वा ज़ालिका खैर। ये औलाद आदम हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारे जिस्म के काबिल सितर हिस्सों को छुपाता है, बायस ज़ीनत भी है, اور لباس کی تمام تر تعریف کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, لباس التقوی ذالک خیر, اور یہ تقوی کا لباس بہترین ہے. ایک صاحب نے کسی کراچی کے بس سٹاپ پہ سرتاپا پوش علاقے میں ایک خاتون کو دیکھا جو حجاب میں ڈوبی ہوئی تھی. بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے کہ دیکھیں اس ان علاقوں میں بھی ماشاءاللہ ایسے حجاب والی ہیں. ایک لڑکا ان کے سامنے سے گزرا, انہوں نے فوراً شیک ہینڈ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. تو بعض اوقات لباس کو بھی حجاب کو بھی جو ہے آڑ بنایا جاتا ہے. تو خدا را اگر ایسی محفلوں میں جانا ہو اپنے لباس کی مکمل حفاظت کیجئے, مکمل طور پہ باحجاب جائیے اور لوگوں کو بھی سکھائیے, کیونکہ اصل فتنہ عورت کی طرف سے شروع ہوتا ہے. اور لباس کو جو کہا گیا ہے, تقوی کو جو کہا گیا ہے, لباس التقوی ذالک خیر, کہ یہ بہترین ہے. کیوں لباس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ جو آپ کو سردی گرمی کے اثر سے بچاتا ہے, جو آپ کو زینت دیتا ہے. دو کام ہیں, تقوی کے بھی یہی کام ہے, آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور آپ کی شخصیت میں ایک حسن پیدا کرتا ہے. روایت میں آیا ہے کہ اپنی عورتوں کو کم لباس بنا کر گھروں سے باہر جانے سے روکو. عورت جتنے نئے لباس بنائے گی اتنا ہی زیادہ اس کو نکلنے کا شوق ہوگا, لباس دکھانے کا شوق ہوگا, اور عورت کی فطرت ہے. اللہ فرماتا ہے کن تو کنز مخفی, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, فحبب تو ان عورف, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. آج کل کی عورت بھی گھر سے نکلتے ہوئے کہتی ہے میں چھپی ہوئی خزانہ تھی, میں نے چاہا کہ میں پہچانی جاؤں. چنانچہ میں نے ایک لباس سلوایا لون کا یا کسی کا بھی اور میں باہر نکلی. تو عورت کے لیے نہیں حدیث ہے یہ اللہ نے اپنے لیے, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے میں پہچانا جاؤں. اور عورت کہتی ہے کہ میں پہچانی جاؤں. خوبصورت لگنے کی خواہش انسان کو, عورت کو کتنے بڑے نقصان سے دوچار کر دیتی ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا زاہد, پیغمبر نے اس کو خوشخبری دی, اللہ تعالیٰ نے تمہاری تین خواہشات تین دعائیں پوری کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, اب تم تین خواہشات کر سکتے ہو, تین دعائیں کر سکتے ہو, تینوں قبول ہوں گی. عورت نے فوراً کہا کہ تم تینوں دعائیں چھوڑو, ایک دعا میرے لیے کر دو کہ اللہ مجھے خوبصورت ترین عورت بنا دے. اس نے دعا کی اللہ میری بیوی کو سب سے خوبصورت عورت بنا دے, اور وہ سب سے خوبصورت بن گئی. اور پھر مس یونیورس سے ملنے کے لیے, ان کے دیدار کے لیے دنیا بھر سے لوگ آنے لگے اور خطوطوں کا تبادلہ ہونے لگا. شوہر کو بڑا غصہ آیا, بہت پریشان ہوا. اس نے کہا بیوی میرے پاس دو دعائیں باقی ہیں, کوئی بات نہیں, یہ میری عزت کا معاملہ ہے. اس نے کہا یہ اللہ اس کو بدصورت بنا دے. اب وہ عورت جس میں لوگ ریجھتے تھے وہ ریچھنی بن گئی. ریچھ کہ جو مونس ہوتی ہے, ریچھنی آپ دیکھ لیں آپ کیسی ہوتی ہوگی, روشنی تصور کریں آپ ذہن میں. اب جو ہے لوگ تو چھٹ گئے لیکن خود گھر والے پریشان ہو گئے, ابا ہمیں نیند نہیں آتی ابا کو دیکھ کے کہ کیا کریں. تو اس نے کہا کہ کچھ تو کرو, کم از کم اس کو پہلی اس والی صورت میں لاؤ. تو اس نے تیسری دعا کی اللہ اس کو اپنی سابقہ صورت میں واپس لا دے. تینوں دعائیں, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا بارہ نے. گفتگو, اگر اس قسم کی گیدرنگ ہو تو گفتگو اس طرح کی ہو کہ آپ کی آواز میں کوئی لچک نہ ہو. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ فحش گفتگو کے بارے میں بدترین انسان وہ ہے جس کی بد اخلاقی اور فحش کلامی کے خوف سے لوگ اسے چھوڑ دیں. اب لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, ابھی آپ نے ڈاکٹر عابد کا لیکچر سنا کہ سلام کرنا کیوں نامحرم کو منع کیا گیا ہے, یہ فتنہ فساد سے. سائیکولوجیکل اسٹڈی ہے کہ عورت وربلی اورینٹیڈ ہوتی ہے اور مرد ویژولی اورینٹیڈ, اور یہ حدیث میں پہلے سے موجود ہے. عورت کی خوبصورتی اس کے چہرے میں ہے اور مرد کی خوبصورتی اس کی زبان میں ہے. آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ تم نے اس میں کیا دیکھا اس عورت میں کہ دیکھتے ہی پھسل گئے, اور عورت کو کیا کہا جاتا ہے کہ تم نے اس مرد میں کیا دیکھا کہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی. عورت کو کبھی نہیں کہا جاتا تم اس کو دیکھ کے پھسل گئی, اور مرد کو کبھی نہیں کہا جاتا کہ تم نے اس نے تم کو بیوقوف بنا لیا. یہ عورت مرد ہے جو باتوں سے بیوقوف بنا لیتا ہے, اور یہ عورت ہے جو اپنے حسن سے گھائل کر دیتی ہے. یہ آج کی سائیکولوجیکل اسٹڈیز کی پروف ریسرچ ہے کہ مین آر ویژولی اورینٹیڈ, وہ دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہے, اور عورت سن کر. وومین آر وربلی اورینٹیڈ. اسی لیے جب سے یہ چیٹنگ کا دور شروع ہوا ہے, اسکائپ شروع ہوا ہے, انٹرنیٹ شروع ہوا ہے, فون کالز ای میل شروع ہوئی ہیں, عورتیں بھی اب شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو گئی ہیں کیونکہ وہ وربلی اورینٹیڈ ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آدمی بیڈ روم میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے, اس میں اور بڑا فتنہ ہے. پہلے لوگ کہتے تھے مولدین فلاں پارک میں مت جانا, فلاں دکان میں مت جانا, فلاں نکڑ پہ نہیں کھڑے ہونا, فلاں گلی میں نہیں جانا. اب کیا کہتے ہیں, دیکھو دروازے بند کر کے نہیں بیٹھنا, دروازہ کھلا رکھنا. पत्नी बच्चा क्या कर रहा है अंदर, पत्नी बच्ची क्या कर रही है अंदर, खिड़की दरवाजे बंद है, तो तन्हाई और जिसे कहते हैं बहुत बड़ा फितना बन गई है। शैतान ने एक दफ़ा नूह अलैहिस्सलाम को आके शुक्रिया अदा किया और कहा कि जितने मेरे फॉलोअर्स थे वो तो तूफान में गर्क हो गए, और जितने आपके पार्टनर्स थे हवारी वो बच गए, अब तो कोई इम्कान नहीं आपके हवारियों को बरगलाने का। हाँ, उनकी नस्लों में लोग पैदा होंगे तो उनको बरगलाऊंगा, अभी तो बहुत बड़ा पीरियड है रेस्ट का, तो शुक्रिया आपका, इसके बदले में अगर मैं कोई आपकी खिदमत करना चाहूँ तो मुझे बताएं। तो उन्होंने पूछा कि तुम किस तरह लोगों पर वार करते हो, तो शैतान ने कहा मुझे तीन मौक़ों पर कभी नहीं भूलिएगा, तीन मौक़ों पर मैं वार करता हूँ, दो लोगों के दरमियान इंसाफ जब करना हो गुस्से की हालत में, और जब इंसान औरत से तन्हाई हो। अब हमारे दौर में औरत से मिलने के लिए किसी जगह का इंतखाब जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बेडरूम में जो है वो औरत से मिल सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा तुम्हारी औरत के कहीं जाने से खतरनाक है किसी नाकाबिले भरोसा इंसान का तुम्हारे घर आना, चाहे वो आपका कजन ही क्यों ना हो, कजन ही क्यों ना हो, लेकिन बहरहाल ना महरम है तो चनाचा उसके साथ आपका पर्दा बिल्कुल वाजिब हो। आठवां इलाज इस बेहयाई का एहतियात, यानी आप तन्हाई में हो तो भी एहतियात से काम लें, जब आप महफिल में हो तो भी एहतियात से काम लें। ये आयत आपने बारह सुनी होगी, कुल लिलमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम वयहफजू फुरूजहुम, ये रसूल आप मर्द मोमिनों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये गुनाह शुरू ही आंखों से होता है, इमाम की रिवायत है कि शहवत की निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है, और सिर्फ मर्द की नहीं औरत की निगाह को भी कहा गया है कि वो भी अपनी निगाहों की बात करें। वकुल लिल मुमिनाति यगज़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़्ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, ए रसूल आप मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। फिर एक इजाफी टुकड़ा, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत और आराइश को जाहिर ना करें। यह एक एडिशनल ड्यूटी या जिम्मेदारी औरत की गई है, लेकिन बहरहाल नजरों की हिफाजत मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए। उसके बाद यह कहा गया है कि वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फाहिशतन वसा सबीला, देखिए यह नहीं कहा कि जिना ना करो, खुदा कह सकता था, खुदा कहता है रिवायतों में, झूठ ना बोलो, चुगली ना करो, हराम ना खाओ, सूद ना खाओ, झूठ ना बोलो, बद इखलाकी ना करो, तोहिन ना करो, वगैरह वगैरह, लेकिन जब जिना की बात आई तो अल्लाह कहता है जिना के करीब भी ना फटको, जिना के करीब भी ना जाओ, यानी तमाम मुकदमात जिना उससे अपने आप को बचाना है। क्या एहतियात बरत सकता है इंसान? इमाम फरमाते हैं अगर तेरे बस में हो कि तू किसी गैर महरम महरम के कपड़े की तरफ भी निगाह ना करे तो ऐसा ही कर। और इसका इदराक हमें जब उस वक्त हुआ, एक दोस्त के साथ किसी जगह गए तो वो एक दुकान पे खड़े होकर कपड़े को देखने का, हमने कहा भाई खैरियत तो ही लेडीज कपड़ा यहाँ क्यों खड़े हो गए, तो कहने लगे कि काश इसमें जान होती। आप देखा फैंटेसी, देखी इंसान की फैंटेसी कहाँ कहाँ तक चली जाती है। तो ख़वातीन को शायद इस बात का इदराक नहीं होता, लेकिन मर्द को अल्लाह ताला ने ऐसी जिबिल्लतों से ऐसे गराइज से नवाजा है कि उसको इस बात को कंट्रोल करना है। तो वही जो कहा गया कि वुमन आर वर्बली ओरिएंटेड एंड मैन आर विजुअली ओरिएंटेड, क्या क्या मुकदमात हैं जिना के? आंख का जिना हराम की तरफ देखना, पांव का जिना हराम की तरफ चलना, कान का जिना हराम बातों का सुनना। तो जरूरी नहीं है कि जिना जिना ही हो, जिना के जितने भी मुकदमात हैं, बेहयाई के जितने भी तरीके हैं जो बिल आखिर जिना की तरफ लेके जाते हैं, उनसे आपको बचना। क्या मुकदमात हैं? ड्रामे, फिल्में, इश्तहारात, कोई चीज नहीं बची जिसके बारे में आप कहें कि इसको देख के मुझे कुछ नहीं होता। कोई इश्तिहार मुझे बतला दें टीवी पे जो आता हो जिसमें हराम ना शामिल हो, कोई ड्रामा बतला दीजिए जिसमें हराम ना शामिल हो, कोई टॉक शो बेहया नहीं तो कम से कम झूठ, तोहमत, तौहीन, और न्यूज भी आपने देखा है कि प्रोपेगेंडा, अफवाह और झूठ पर मुश्तमिल होती है, तो कम से कम जो सेकुलर टीवी चैनल्स हैं उनके लिए तो आप इन्ना लिल्ला पढ़ दें। अलगिना रुकैयतु ज़िना, गिना गाना जिना का पेश खेमा है। अव्वल तो गाना ऐसा मिलता ही नहीं कि जिसमें इश्किया अशार ना हो, अगर इश्किया अशार ना भी हो तो भी अल्टीमेटली वो जिना ही की तरफ लेके जाता है। बहरहाल इस बेहयाई का जो अल्टीमेट सोल्यूशन है, बेहतरीन सोल्यूशन है, वो है निकाह, जो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल उसको इतना डिले किया जाता है, इतना डिले किया जाता है, जैसे अभी हमने बताया 25-30 साल के लतीफे से, कि लोग जो हैं वो फिर ये नहीं देखते कि लड़का कैसा है, या वो नहीं देखते कि लड़की कैसी है। उसमें जो इस्लामी शरई उसूलों के मुताबिक जो खसूसियात होनी चाहिए, निकाली के लिए कहा जाता है औरत एक ऐसा बिच्छू है जिसके डसने में भी मजा है। अच्छा, ये आप जैसी औरतों के लिए नहीं है, ये बेहया औरतों के लिए, बेहजाब औरतों के लिए है, मौला अली का कौल है। औरत एक औरत सरापा शर है, और सबसे बुरा या बड़ा शर ये है कि इसके बगैर चारा भी नहीं। तो ये अपने आप को बेहयाई से बचाने का तरीका है, इन शरपसंद औरतों से बचाने का तरीका है, इन बिच्छू जैसी औरतों से बचाने का तरीका है कि इंसान निकाह करे। जैसे कहते ना कि इंसान की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है, और नाकामी के पीछे बहुत सी। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि पैसे नहीं है, स्टैब्लिश नहीं है, पाँव पे खड़े नहीं हुए हैं। कुरान में बाकायदा वाज़ह तौर पे कह दिया गया है, वन के हूँ व अन के हल अयामा मिनकुम व सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुकरा युग्निहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, और अपनी बेशौहर औरतों और बे औरत मर्दों और अपने गुलामों और अपनी लौंडियों में से सलाहियत रखने वालों का निकाह कर दिया करो, अगर वो गरीब व नादार होंगे तो अल्लाह इन्हें अपने फजल व करम से मालदार बना देगा। एक शख्स आया, रसूलल्लाह मैं गरीब हूँ, फ़कीर हूँ, क्या करूँ? रसूल ने कहा निकाह कर लो। निकाह कर लिया, फिर दोबारा आया, रसूल आपने कहा था लेकिन कोई फायदा नहीं, दूसरा निकाह कर लो। फिर आया, मतलब तीसरा निकाह कर लो, उसके बाद उसकी दौलत में इजाफा। तो यहां पे जो है वो एक निकाह नहीं होता, एक शादी नहीं होती, कैसे होगी? जब दुल्हन का मेकअप 50,000 का होगा तो मुझे बताइए शादी कैसे होगी? जोड़ों पे जो है वो लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे, मेहर जो है वो लाखों रुपए का रखा जाएगा, और बहुत ज्यादा डिमांड की जाएगी जहेज की, तो कैसे शादियां होंगी इस महंगाई के दौर में? मर्दों को छोड़ औरतों को कहा जाता है कि भाई अब अपना जहेज खुद तैयार करो, अपनी शादी खुद करो, बल्कि जॉब करो, स्कूल कॉलेज में जाओ, अपने लिए लड़का भी खुद तलाश करो। जॉब करना, तालीम देना बुरा नहीं है, लेकिन इसको वसीला और तरीका बना दिया जाए, फकत और फकत इसलिए पढ़ाई जाए, पढ़ाया जाए, अल इल्मो नूरुन के मिज़दाक पढ़ाया जाए, कोई कबाहत नहीं। लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी शोबे अख्तियार करती हैं, खिदमत खल्क के लिए इस्तेमाल करती हैं, बाहिजाब और शरई तरीकों से उसको अंजाम देती हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूरत है हमें ऐसी पढ़ी लिखी खवातीन की। जो जवान नौजवानी में शादी करता है उसका शैतान चीख उठता है और कहता है हाय अफसोस, उसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। कितना दीन? कुछ रिवायत में है कि आधा दीन, और कुछ रिवायतों में है दो तिहाई दीन। कितनी बड़ी फजीलत है, बैठे बिठाए शादी करके आपको आधा दीन मिल गया। शादी शुदा की 2 रकात नमाज उन 70 रकात से अफजल है जो गैर शादी शुदा पढ़ता है। लोग कहते हैं कि भाई आपने फिर भी 2 रकात तो पढ़वाई दी, कोई ऐसा सवाब जो बैठे बैठा? जी हाँ, शादी शुदा जो सोया हुआ हो अल्लाह तबारक ताला के नजदीक उस रोजेदार नमाजी से अफजल है जो कुमारा हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जॉब वॉब छोड़ के सोना शुरू कर दें कि मैं जो हूं अब घर की रोटियां तोड़ूंगा और बस वैसे ही कमा लूंगा। शादी करके लोग बड़े खुश, भाई हमारे तो शादी हो गई, अब सब जाएं भाड़ में। आपसे किसी के रिश्ते के बारे में पूछा जाए, किसी की जमानत ली जाए, किसी की तफ्तीश की जाए, आप फौरन अपना दामन झाड़ के अलग हो जाते हैं, भाई मुझे नहीं मालूम, आप खुद तहकीक करें। अपने खानदान वालों के बारे में लोग जमानत देने के लिए तैयार नहीं। सबसे अफजल सिफारिश ये है कि निकाह के 2 आदमियों के दरमियान सिफारिश की जाए ताकि वो इकट्ठा हो जाए। कितनी बड़ी सिफारिश, कितनी बड़ी जो है वो ने किया। मुतबादल क्या है इस बेहयाई का? इश्क इलाही, खुदा से मोहब्बत करना अगर आप सीख लें सारे मसले आ जाए, आसान हो जाए। बीबी आसिया ने जो दुआ की थी वो कुरान में मनकूल है, रब्बि इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना। खुदा ने फरमाया, बीबी मरियम कहती हैं कि अल्लाह जन्नत में मेरे लिए एक घर बना दे। रब्बि इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, खुदा ने कहा उसकी कीमत बहुत महंगी है। जवाब में बीबी ऐसे ने फरमाया कि मेरी 1,000 जान भी हो तो वो कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूं। जब आप इस तरह का इश्क इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इस बिहाई से जरूर बचाएगा। मजनू ने शहर छोड़ा तू सहरा भी छोड़ दे, नज़ारे की हविस है तो लैला भी छोड़ दे। वाइस कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे। है रस्म आशिकी में अलग सब से बैठना, मैं खाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। अगर इसके बावजूद आपको ये बात नहीं समझ में आती, हमारे पास एक मदरसे के तालिबे इल्म आए, चलो आपसे एक मसला पूछना है, अरे भाई हम इस फिक्र की फील्ड करें, नहीं सर बहुत आसान मसला है आप जवाब दे देंगे, अच्छा भी पूछिए। सर वो मेरी एक लड़की से दोस्ती है। हमने कहा हाँ ये क्या बात हुई? कहने सर नहीं आप मुझ पर शक ना करें, बहुत पाकीज़ा दोस्ती है और मैं हम जो है कोई गंदी बात नहीं करते, कोई गलत। मैंने कहा क्या मतलब, कोई तौज़ील मसाइल डिस्कस करते हो? नहीं नहीं सर तौज़ील मसाइल तो नहीं, मैंने कहा क्या मैयत के मसाइल डिस्कस करते हो? मैं खबर में क्या सवाल पूछे जाएंगे वो डिस्कस करते हो? क्या डिस्कस करते हो? नहीं नहीं सर आप हमाखाई में आप सर बहुत जज्बाती हो रहे हैं, आप जो हैं सर समझे सर कोई 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 मसला नहीं है, इसी तरह घबरा घबरा के बोल रहे होते जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। सर कोई मसला नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल इट्स ओके, आप बिल्कुल घबराएं मत। तो मैंने कहा भाई आप बता क्यों रहे हैं, आप घबराएं मत, आप करें दोस्ती। तो जब वो नहीं माना और फतवा लेने पे बिल्कुल मुसरत के नहीं आपको बताना पड़ेगा ये सही है कि नहीं है, मैंने कहा एक बात बताओ तुम्हारी बहन है? कहने हाँ। अब बिल्कुल ब्लैकआउट स्विच ऑफ, मैंने कहा तुम्हारी बहन से कोई इस तरह की दोस्ती करना चाहे? और फिर खामोशी से उठ के चला गया, मेरे बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले। ये इमाम छठे इमाम के पास एक शख्स आया था, बिल्कुल इसी तरह कहा था उसने। छठे इमाम से पूछा था, इमाम मैं फला औरत से गलत काम करना चाहता हूँ। इमाम ने कहा क्या तू चाहता है कि तेरी घर वाली से भी वो कोई शख्स ये काम करना चाहे? खामोश हो गया। हम बचपन से एक जुमला सुनते आए थे, क्या तुम्हारी माँ बहनें नहीं है? लोगों की ज़बानी, हमने खुद नहीं सुना। तो क्या तुम्हारी माँ, ये इमाम की रिवायत से जिससे ये ज़रूर मसल बन गई है। और मोमिन उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो चीज़ें पसंद ना करे दूसरों के लिए जो अपने लिए पसंद करता। अगर आप फ्रेंडशिप चाहते हैं तो अपनी बहन को भी पेश करें। क्यों आदमी अपनी बहन को निकाह के लिए पेश कर देता है? क्योंकि जायज़ है, अल्लाह ने उसको हलाल रखा है, जिना को हराम रखा है, फ्रेंडशिप को हराम रखा है, इसलिए अपनी बहन के लिए ये चीज़ गवारा नहीं करता। और जो ये काम करते भी हैं शादी के बाद फिर वही चीज़ें वही शकुक शुबात अपनी जौजा के लिए रखते हैं, फिर शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट बन जाते हैं, डिल्यूजन हेलुसिनेशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार बन जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये बात आपके लिए भी यानी अपने मर्दों के लिए भी कि अगर आप बेरारवी का शिकार होंगी तो आपके मर्द भी, और मर्द अगर बेरारवी का शिकार होंगी तो उनकी औरतें भी। लेकिन बाज़ात ये कुलिया कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं होता और कुछ लोग जो हैं वो अप्लाई करने नहीं देते। खैबर के दर को उखाड़ने वाला जब खैबर को फतह कर चुका तो तमाम लोग अंदर चले गए, बाहर खड़ा हुआ, लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं अंदर जाते? आपको तो सबसे पहले अंदर जाना चाहिए, आप तो फातह खैबर हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम यहूदियों की औरतें किस हालत में अंदर होंगी। औरों की बात तो छोड़ें, मौला यहां पे गैरों की औरतों की इज्जत के मुहाफिज बने हुए हैं। मौला जब कूफे में आए तो कूफे के मर्दों को मुखातिब करके कहा, बेहिजाब औरतों को वहां घूमते फिरते देखकर, एक कूफे के मर्दों तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? कोई हदीस रिवायत नहीं सुनाई, मर्दों की मर्दानगी को ललकारा, गैरत को ललकारा। क्योंकि अगर इस्लाम में कोई रिवायत आयत ना भी हो तो ये मर्द की फितरत है कि अपनी औरत को बेहिजाब नहीं देख सकता, बाजारों में उनकी तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे नहीं मालूम कि खैबर को फतह करने वाला औरतों का महाफिज, यहूदी औरतों का महाफिज, कूफे में मुसलमान औरतों के हिजाब का रखवाला, जब अपनी घर की बीबियों को कूफा बाजार के शाम के बाजारों में देखता होगा तो उसने ये मंजर किस तरह बर्दाश्त किया होगा। अल्लाह रहमतुल्लाह कौमी जालिमीन, कोई सवाल अगर इस से मुतालिक हो तो आप पूछ सकते हैं। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.